सच्चा अमानतदार ताज मुझे को तू या रब बना।
सच्चा अमानतदार ताज मुझे को तू या रब बना।
तेरी पसंद की हो तिजारत गफलतों से तू बचा।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام احکام تجارت ہے. جیسا کہ لاسٹ ویک جو پروگرام آپ نے دیکھا تھا یہ آج کا پروگرام آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی کی ایکسٹینشن ہے یا ریمیننگ پارٹ ہے اور ہمارے ساتھ وہی افراد موجود ہیں جو پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے. پروفیشنلز ہیں، بزنس پرسن ہیں اور مختلف کمپنیز سے وابستہ افراد ہیں. ان کے سوالات تھے، مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل العالی کے جوابات تھے اور الحمدللہ ہم نے خوب ساری باتیں سیکھنے کی کوشش کی تھی. آج بھی ایسا ہی سلسلہ رہے گا. ہمارے ساتھ سید اشر الحق صاحب ہیں، ندیم ریاض صدیقی صاحب ہیں، فحاس اقبال صاحب ہیں اور فیصل صدیقی صاحب ہیں. انشاءاللہ ان کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، بیچ بیچ میں کہیں نہ کہیں میں بھی ہوں گا. پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اس کے نام اعمال سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، فہد بھائی کی طرف بڑھ رہے ہیں. فہد اقبال بھائی کیا سوال کریں گے؟
مفتی صاحب، ہم نارملی کچھ ایسٹس لے کے اس کو رینٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کی ایک صورت ہے کہ میں نے سمجھے گاڑی پرچیز کی ہے اور پھر اس کو ڈرائیور کے یا کسی ایک شخص کے حوالے اس کو کر دی، اور اس کے بعد پھر اس سے میں نے یہ تقاضا کیا کہ آپ فرض کر لیں منتھلی مجھے 10,000 روپے 15,000 روپے دے دیں، اس سے زیادہ وہ جتنا ارن کرتا ہے وہ اس کا پروفٹ ہے یا اس کی ارننگ. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟
کرائے پر چیزوں کو لینا دینا یہ تو شروع سے ہو رہا ہے، یعنی شریعت مطالعہ نے کبھی بھی اس پر کوئی روک ٹوک نہیں لگائی. ڈفرینٹ چیزیں، چلن بدلا ہے، رواج بدلا ہے. کبھی ایک زمانہ ہوگا کہ بعض چیزیں کرائے پر نہیں لی دی جاتی ہوں گی، اب یہ ہے کہ لی دی جاتی ہیں. تو کرائے پر جو لین دین ہے بنیادی طور پر تو ایک اسلامک کانٹریکٹ ہے، اور گاڑی بھی کرائے پر دی جا سکتی ہے. کرایہ متعین آپ نے کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اس کو نفع ہوا تو ہوا، نہیں ہوا تب بھی کرایہ تو اس کو دینا پڑے گا. تو بنیادی اعتبار سے تو ٹھیک ہے یہ،
مگر وہ اس کار میں اگر کچھ اس سے لاس نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی پھر صورت کیا بنے گی؟ وہ بیئر کرے گا یا اس کو اونر بیئر کرے گا؟ خدا نہ خواستہ کچھ اس کا حادثہ ہو جاتا ہے.
دیکھیں، جس کی پراپرٹی ہے، پہلی بات تو یہ کہ نقصان اس کا ہو رہا ہے.
صحیح.
اگر ڈرائیور کا قصور پایا جاتا ہے، اس کی غفلت سے اگر نقصان ہوتا ہے تو یہ ہے کہ نقصان اس پر آئے گا. ورنہ عمومی حالات میں، مثال کے طور پر کوئی اور آدمی پیچھے سے گاڑی مار کے چلا گیا، اس میں تو جس کی یہ پراپرٹی ہے اس کا ہی نقصان ہوگا، ڈرائیور پر نہیں آئے گا.
ندیم ریاض صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. ندیم بھائی، آپ کے ذہن میں اس وقت کیا سوال ہے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟
مفتی صاحب، ہماری فیلڈ میں ایک معاملہ ہے، کمپنیز جو ہے نا، کمپنیز ایک پرائس لسٹ ایشو کرتی ہیں اور پروڈکٹ کے اوپر بھی ایم آر پی لکھا ہوا ہوتا ہے. تمام تقریباً پروڈکٹس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں الیکٹرانک
ایم آر پی کا کیا مطلب ہے؟
منیمم ریٹیل پرائس.
ٹھیک ہے.
اور ہمارے یہاں گیس اپلائنسز میں بھی یہ ہوتا ہے، اور ڈیلرس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس ریٹس پر بیچیں. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ وہ ریٹیل پرائس تو ڈیلر مٹا دیتا ہے یا اس کو شو نہیں کراتا کنزیومر کو، اور وہ اس کے اوپر پرائسز دینا شروع کر دیتا ہے. تو کیا اس زاویے سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے حساب سے یہ پروفٹ اس کا جائز ہے؟
جو آپ کا سوال ہے اس کے حساب سے تو میکسیمم لکھا ہونا چاہیے تھا.
نہیں، منیمم ریٹیل پرائس کا ہوتا ہے.
منیمم لکھا ہوتا ہے.
جی جی.
دیکھیں، جب آپ نے کوئی چیز خرید لی ہے تو ڈیلر تو اس کا مالک نہیں ہے، کمپنی تو اس کے مالک نہیں ہے، اس کے مالک آپ ہیں. عام طور پر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر کچھ اخلاقی معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری کمپنی کا مال بیچیں گے، دوسری کمپنی کا مال نہیں بیچیں گے، ہم آپ کو اپنا ڈیلر بنا رہے ہیں، آپ ہماری پروموشن کریں. تو یہ سب جو ہے نا وہ اخلاقی معاہدے ہیں، تو اخلاقی بنیادوں اور تقاضوں پر ان کا پورا کرنا بہتر ہے. اب یہ ہے کہ کم یا زیادہ قیمت پر بیچنا، تو کم یا زیادہ قیمت پر بیچنا جب آنرشپ آپ کی آ گئی ہے تو اصولی طور پر تو آپ با اختیار ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اخلاق و آداب اور لوگ آپ کو برا بھلا نہ کہیں، اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے. اب کوئی آدمی جو ہے مارکیٹ میں، جیسا کہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات دو ٹھیلے والے آپس میں ٹسل کر لیتے ہیں اور مارکیٹ میں چیز بیچ رہی ہے 20 روپے کی اور وہ 10 روپے پہ آ جائیں گے، 5 روپے پہ آ جائیں گے، تو یہ ایک آدھ دن رہتی ہے اس طرح کی ٹسل. اس طرح کے کاموں میں بعض اوقات سامنے والے کو ضرر پہنچانا مقصود ہوتا ہے، اور ایک ہرسی ہوتی ہے کہ اس کا گاہک میرے پاس آ جائے، یہ بھی کوئی اچھی نیت تو نہیں ہے. تو یوں مارکیٹ جس قیمت پر کھڑی ہوئی ہے آپ اسی قیمت پر اگر بیچ رہے ہیں تو دوسرے دکانداروں کو نقصان نہیں ہوگا، مارکیٹ کے اندر ہلچل نہیں مچے گی، آپ پر انگلیاں نہیں اٹھیں گی. تو یوں انگلیاں اٹھنے سے بچنا بھی بہتر طریقہ ہے، پسندیدہ طریقہ ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے. ایک تو اس چیز کا خیال رکھا جائے، ورنہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے آپ کی، اسپیسیفک ڈیل ہو رہی ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جس کمپنی کا آپ کے ساتھ بہت لینا دینا ہے، بعض اوقات آگے کمپنیز ہوتی ہیں، بڑی کمپنیز کے فرنچائز ہیں، آپ اس کو تھوڑا الگ ریٹ دے دیتے ہیں اور جو ایک بڑے اچھے طریقے سے سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے، تو مذائقہ تو نہیں ہے وہ. نفع اگر آپ نے مہنگا بیچا ناجائز نہیں ہے، سستا بیچا تو یہ کوئی ایکٹیویٹی ناجائز نہیں ہے، دونوں پہلو موجود ہیں. جی
تھوڑا
جی
سمجھ، کچھ کمپنیز ہیں جو باؤنڈ کرتی ہیں کہ جی آپ نے اس پرائس سے نیچے نہیں بیچنا ہے. دیکھا جاتا ہے مارکیٹ میں کہ ڈیلرز جو ہیں وہ اس سے کم میں بیچ رہے ہوتے ہیں.
وہ باؤنڈ اس لیے کرتی ہیں نا کہ ان
جی
کو
اور
شکایتیں
پھر
ملتی
اگر
ہیں.
وہ کہتی ہیں کہ آپ پکڑے جائیں گے نا تو ہم آپ کے اوپر پینلٹی لگائیں گے، 35,000 روپے، 50,000 روپے، 1,00,000 روپے، یہ پینلٹیاں بھی لگاتی ہیں کمپنیز ان ڈیلرز کے اوپر اس کو باؤنڈ کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی ڈیلر اس چیز پہ پاس نہیں آتا.
دیکھیے پلنٹی تو ویسے ناجائز ہے اور وہ تو کوئی اتھارٹی بھی نہیں ہے کہ پلنٹی لگا کے قیمت وصول کریں گی، تو اگر کوئی پکڑنا چاہے جرم کے اعتبار سے تو ان پر جو ہے کچھ کاروائی کر سکتا ہے مقدمہ بازی کی، تو یوں پلنٹی بازی کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. اخلاقی بنیادوں پر کچھ ٹیک آپ نے کیا ہے تو اعلیٰ، اخلاقی معیارات کا معاملہ یہ ہے کہ اس پر پورا اترا جائے، اس چیزوں کو جس کو فالو کیا جائے، اور انتشار شریعت کو محبوب و مطلوب نہیں ہے، انتشار سے بچنا محبوب و مطلوب ہے، اس کا خیال رکھا جائے.
سب آپ نے جیسے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تو ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کو نیچا بنانے کے لیے، اس کا کسٹمر توڑنے کے لیے، اگر دیکھیں ایک بگ پکچر میں اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی بزنس میں کمپٹیشن جو ہے وہ تو بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے اس بزنس کو زندہ رکھنے میں. اگر ہم دیکھیں تو صرف لوکل اور ڈومیسٹک لیول پر نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر کئی کمپنیز ایسی ہیں جو آپس میں ان کا ٹھیک ٹھاک کمپٹیشن ہے، اور اس کمپٹیشن کا نتیجہ یہی ہے کہ ایک کمپنی گرو کرنا چاہتی ہے اور دوسری کو گرو نہیں ہونے دیتی، اور اس پہ تو بڑے بڑے مطلب جو ہے نا وہ موجود ہیں، چیزیں شواہد موجود ہیں. تو پھر کیا کریں گے، تو بزنس اسٹریٹجی ہی تبدیل ہو جائے گی ساری.
دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسٹمر توڑنے سے کہ ایک بندہ وہ ہے جس کی دکان پر کسٹمر آئے جا رہے ہیں، کوئی مایوب بات نہیں ہے. ایک وہ ہے، وہ سوچ ہے کہ میں سامنے والے کی دکان میں جو کھڑا ہوا ہے نا اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے لے آؤں. یہ جو سوچ ہے نا، یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. مسلمان کا نقصان چاہنا ہے، آپ کی دکان پر زیادہ کسٹمر آ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو کسٹمر دوسرے کی دکان پہ کھڑا ہوا ہے اس کو یوں رال ٹپکا کر دیکھنا کہ یہ وہاں کیوں چلا گیا، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے، تو ایک مایوس سی بات ہے. اور پھر جتنی زیادہ اس کے اندر شر پسندی ہوگی اتنا زیادہ اس کی قباحت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. اور آپ نے کمپنیوں کی بات کی ہے، اب تو معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے. ایک ہی کمپنی کی 25 پروڈکٹ ہوتی ہیں، کاسمیٹک چیزیں بنانے والی ایک کمپنی کی 25 پروڈکٹ مارکیٹ میں، خود ہی کمپیٹیٹر ہے وہ ایک دوسرے کی، بڑے ٹول آ گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر. تو
سب میرے ذہن میں تو خیر ہے، لیکن
جی
چلے یہاں تو بہت ساری باتیں جو ہے ہم وہی کرتے ہیں کہ جو جانے جیسی ہوتی ہیں، پہلے بھی عرض کیا گیا. چلے ایک سوال اور شامل کرتے ہیں، سید اشر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی اشر صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟
موسیٰ صاحب، بہت سے لوگ اپنا قرض ادا کرنے کے لیے کمپنیوں سے ایڈوانسز یا کس طرح کا لون ایکوائر کرتے ہیں جو لو مارک اپ ریٹ پر ہوتا ہے، ہائی مارک اپ ریٹ کو ختم کرنے کے لیے، کیا یہ جائز ہے؟
دیکھیں لو ہو یا ہائی ہو، طریقہ اگر سودی ہے تو سود کہلائے گا. سود اور تجارت میں طریقہ کار کا فرق ہے. بہت سارے طریقے ایسے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے फतावा रज़िया शरीफ में बहुत सारे तरीके लिखे हैं। दो आदमी अगर मिलके कोई काम करना चाहते हैं सूद से बचने के लिए, पैसे देने वाला चाहता है कि मैं नफ़ा लूँ, सामने वाला चाहता है पैसे उसे मिलें, तो दर्जनों तरीके ऐसे अपनाए जा सकते हैं कि ज़रूरत पूरी हो सकती है। जहाँ इंस्टीट्यूशन हैं, मालियाती इदारे हैं, वो अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो कन्वर्शन इदारे हैं उनका उनका जो बेस है वो सूद है उसी पर चलते हैं, वरना निजी तौर पर या दिगर ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो गैर सूदी काम करते हैं, तो इनके ज़रिए मुतबादल चीज़ें तो मौजूद हैं। ये बताएं, आप बड़े जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट सवाल तो कर रहे हैं, मैं आपका कार्ड देख रहा था तो माशाल्लाह आप जो है वो एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी से बिलोंग करते हैं, अगरचे कि आपकी फील्ड फाइनेंस है, CFO हैं आप, क्या आप सोच रहे हैं कि आपके जो कंपनी है, ज़ाहिर बात है वो नेटवर्क बेस्ड कंपनी है, तो मैं खबर पढ़ रहा था एक व्हाट्सएप ग्रुप में चल रही थी कि जनाब सेटेलाइट आने वाला है, फिर तो तार शार सब ख़त्म हो जाएंगे, होगा ऐसा?
जी बिल्कुल, ये कोशिश की जा रही है, जो 5G की जो अभी चेंजिंग आ रही है उसके तहत ये किया जाएगा कि तमाम चीज़ें वायरलेस इस सिस्टम पे लेकर आ जाएंगी, और तमाम जो ये वायरिंग सिस्टम चल रहे हैं जिसकी वजह से फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर सब चीज़ें कन्वर्ट की जा रही हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म की जाएंगी, क्योंकि जिसकी वजह से
5G में क्या वो ख़त्म हो जाती है?
उससे स्पीड तो बढ़ जाती है नेटवर्किंग की, और उसके ज़रिए जो मुख्तलिफ जगहों पर आपने टावर्स देखे होंगे, मोबाइल के जो टावर्स लगे होते हैं उनके जरिए सिग्नल्स के ऊपर काम हो रहा होता है, वो है तो थोड़ा सा मुद्दे से है।
अगर सेटेलाइट आएगा फिर तो टावर्स भी खत्म हो जाएंगे?
नहीं, टावर्स रहेंगे
या मुतबादल के तौर पर सेटेलाइट
उनके बिल्कुल इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा,
तो महंगा ज़्यादा तो वो महदूद ही रहेगा शायद।
जी बिल्कुल,
तो नेटवर्किंग कंपनी है आपकी, तो क्या ख्याल है, नेटवर्किंग कंपनी दुनिया को चला रही है?
बिल्कुल,
एक जहाज भी अगर रन कर रहा है तो नेटवर्क कंपनी का काम है।
बिल्कुल
ठीक है, और एक थाना भी चल रहा है तो थाने के अंदर जो फोन लगा हुआ है वो नेटवर्क कंपनी है, तो नेटवर्क कंपनियों की भाषा ही वैसे आजकल
फ्यूचर ही नेटवर्क
बुनियादी काम है।
जी बिल्कुल,
बुनियादी काम है, बड़ा स्कोप है। मैं जानता हूँ किसी कंपनी को भी, पाकिस्तान की कंपनी है फाइबर ऑप्टिकल बनाती है, कि जो एक्सपोर्ट कर रही है, यानी बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी में खास तौर पर, तो पाकिस्तान के अंदर कंपनी का होना और वो एक्सपोर्ट करना पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात है।
जी बिल्कुल,
अगला सवाल शामिल है, सिलसिला करते हैं, फहद इकबाल भाई की तरफ बढ़ते हैं। जी फहद इकबाल भाई।
मुफ्ती साहब, हम बेसिकली इस्लामिक बैंकिंग और एसेट सिक्योरिटी की हमारी बात हो रही थी, तो आजकल इंश्योरेंस की जगह तकाफुल का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो दो सवाल इसमें थे कि या तो उसमें मतलब नुक्स क्या हैं या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश क्या है, या तकाफुल कराना कैसा है को एसेट्स को सिक्योर करने के लिए, इस्लामिक बैंकिंग को इंडोज करते हुए इसको बात करें।
फिर तो आप ये बताएं ना कि आप हमारे 6th जो बैच होगा इस्लामिक फाइनेंस कोर्स का, उसमें दाखिल ले रहे हैं कि नहीं?
इंशाल्लाह,
आपकी दिलचस्पी ज़्यादा है माशाल्लाह, तो उसमें आप दाखिला लेंगे तो इस तरह के जो मौजूदात हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि ये जो सवाल है आपका ये बुनियादी तौर पर इसका जवाब 2 घंटे का है। अब मैं मुख्तसर जवाब दूँ तो देना तो पड़ेगा। खैर देखें, एक जो सूदी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस या तकाफुल, उसके 2 मॉडल होते हैं, एक जनरल और एक लाइफ। जो लाइफ है तो जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट है, सिर्फ एक चीज़ का फर्क है कि दौराने पैकेज अगर इंतकाल हो जाता है तो क्लेम किस तरह लेंगे आप, बाकी यही है कि वो 20 साल 15 साल और सेविंग अकाउंट के तरह मॉडल पर चलता है। जिस तरह सूदी बैंकों का सेविंग अकाउंट चलता है, इंश्योरेंस कंपनियों का लाइफ तक लाइफ इंश्योरेंस इसी तरह चलता है। जिस तरह इस्लामी बैंकों का सेविंग अकाउंट चलता है, तकाफुल कंपनियों का जो लाइफ तकाफुल है वो इसी तरह चलता है। फ़र्क है सिर्फ क्लेम की अदायगी में, तो जो तकाफुल कंपनियां हैं वो एक वक्फ पुल बनाती हैं और उसमें फंड डालती हैं, उस फंड से क्लेम अदा करती हैं। सऊदी सिस्टम के अंदर इस तरह का अलग से कोई फंड नहीं होता। सऊदी सिस्टम के अंदर आपकी जो रकम है वो आपकी मिल्कियत पर बरकरार रहती है, आपकी अपनी रकम है, उसी के ज़रिए आपको कंडीशनल बेनिफिट्स ऑफर किए जाते हैं, जो कि एक सऊदी तरीक़ाकार है। तकाफुल के अंदर क्या होता है कि एक पूल क्रिएट किया जाता है, पहले तो एक वक्फ क्रिएट किया जाता है, होता है ना, मस्जिद वक्फ है, मदरसा वक्फ है, تو اس طریقے سے ایک وقف کریٹ کیا جاتا ہے. وقف کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی یتیم خانہ ہے، کسی نے جگہ وقف کر دی، یتیم خانہ بنے گا. وقف ایک لیگل انٹیٹی ہوتا ہے، یعنی وہ خود چیزوں کا مالک بنتا ہے، مالک بھی بناتا ہے، ایک شخص قانونی ہوتا ہے. تو اس وقف کو جو تکافل کمپنیاں کریٹ کرتی ہیں ایک لیگل انٹیٹی کے طور پر، اس ان شرائط کے ساتھ وقف کیا جاتا ہے کہ اس پول میں جو بھی آئے گا اس کی اس طریقے سے مدد کی جائے گی. جب آپ پیسے دیتے ہیں تو در حقیقت جنرل تکافل میں تو سارے کے سارے پیسے اس وقف کی ملکیت میں دے رہے ہوتے ہیں، آپ فارغ، آپ وہ پیسے ناقابل واپسی ہیں. اور جو لائف تکافل ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو پیسے دے رہے ہوتے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ وقف پول میں جاتا ہے کلیم سے ادا ہونے، یہ آپ کی ملکیت سے نکل گیا، ایک حصہ سیونگ اکاؤنٹ میں جاتا ہے. جنرل تکافل کا سمجھنا آسان ہے. جو جنرل تکافل کے لیے وقف قائم ہونے کا سلسلہ ہے تو فقہ حنفی میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پیسے کا وقف کریں. بعض لوگوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ جی امام ظفر کا یہ قول ہے کہ پیسوں کا وقف، نقود کا وقف ہو سکتا ہے، انہیں شبہ لگا یا خطا واقع ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے، اس مسئلے میں تفصیل ہے اور اس مسئلے پر پورا میرا ایک رسالہ موجود ہے، جب وہ مزید ہم پر آئے گا تو اس کی مزید تفصیل پڑھی جا سکتی ہے. بعض کمپنیوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک پراپرٹی وقف کی ہے، پراپرٹی کا جو وقف ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی مفتا بھی قول کے مطابق، امام محمد، امام یوسف کے قول کے مطابق اس پراپرٹی کے لیے انہوں نے وہ مانگے، عطیات مانگے، کنٹریبیوشن مانگی کہ بھئی یہ ایک مقصد کے لیے وقف قائم کیا گیا ہے، اب اس لوگ اس میں چندہ ڈال رہے ہیں، اب انتظامی اعتبار سے اس کے پول بنا دیے جاتے ہیں کہ یہ جی میڈیکل کا پول ہے، یہ موٹرز کا پول ہے، یہ برننگ کا پول ہے، تو وہ ایک انتظامی ہے، ورنہ تو سب پیسے یہاں آنے کے بعد وقف ہی کی ملکیت میں ہیں. اب اسی سے جو ہے نا وہ پھر جو شرائط ہیں وقف کی اس کے مطابق امداد کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ وقف کا کانسیپٹ ہے.
اسی سے ایک سوال اور دماغ میں آ رہا تھا، ہماری ابھی کلیگس کی اور آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم کسی فلاحی ادارے کو کوئی ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں اماؤنٹ، کوئی بھی اماؤنٹ اس میں، تو اس نے مجھ سے یہ کوشچن کیا تھا کہ یار یہ اماؤنٹ حلال ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس سے اس ادارے کو فرق پڑتا ہے یا اس ادارے کے لیے اماؤنٹ صحیح ہے؟
ہوتا یہ کہ کوئی بھی اماؤنٹ آپ کہیں پر لے کر جاتے ہیں تو اگر سامنے سمجھدار آدمی ہے تو وہ آپ سے کچھ سوالات کرے گا. مثال کے طور پر پوچھے گا کہ صدقہ نافلہ ہے یا واجبہ ہے. نافلہ ہوگا تو اس کے خرچ کرنے کی وسعت بہت زیادہ ہوگی، اگر صدقہ واجبہ ہوگا تو اس کے خرچ کرنے کا جو دائرہ ہے بہت محدود ہوگا، اس سے کیا زکوٰۃ کو دینا ہے. اب واجبہ بھی کئی طرح کا ہے، مثال کے طور پر قسم کا کفارہ آپ لے کر گئے، 10 صدقہ فطر کی رقم، اس کا پوچھنا یوں ضروری ہے کہ اس کو روز ایک شریف فقیر کو ایک صدقہ فطر کی اماؤنٹ دینی ہے، کسی ایک کو ایک ساتھ نہیں دے سکتا. ہو پتا ہوگا، معلوم ہوگا تو وہ آگے یہ کام کرے گا. پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک رقم شریعت نے حکم دیا کہ آپ نے جو رقم لی ہے، جیسا کہ پرائیویڈنٹ فنڈ میں جو اضافی رقم ملتی ہے آپ کی اپنی رقم ہے، ادارے نے ملائی وہ بھی آپ کی رقم ہے، لیکن جو درمیان میں بینک نے اضافہ کیا تو سودی رقم ہے. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جتنی آپ کی اپنی رقم ہے یہ آپ کے لیے حلال و طیب ہے، جو اضافہ ہو کر سود کی صورت میں ملی ہے اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیا جائے. اب آپ گئے اس ادارے کے پاس، وہ پوچھے گا کون سی رقم ہے، آپ نے کہا یہ، اظہار گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی یوں حرام مد کی رقم ہے، یوں بول دے بندہ کہ بھئی یہ صدقہ واجبہ ہے، تو وہ اب اسے مستحق زکوٰۃ پر ہی خرچ کرے گا. تو یوں اس رقم کی حقیقت بتانا، بہت ساری تقسیمات ہیں دعوت اسلامی کے، جب آپ اس پہ جاتے ہیں جہاں پر فنڈ ریز کیا جا سکتا ہے تو ڈیفرنٹ آپشنز آتے ہیں کہ بھئی یہ رقم جو ہے وہ حج عمرے کے صدقے کی ہے، قسم کی ہے، یہ جو ہے وہ نظر کی ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ واجبہ ہے، کیا ہے، تو یوں کوشچن کیے جاتے ہیں.
उससे अगर लोकली देखें, अगर मतलब महलों में या गली में, कुत्तों में या जान पहचान वालों में जब कहीं पे इस तरह का मामला होता है कि सदका वाजिबा दिया जा रहा होता है बिलखसूस, यानी मुस्तहिक को दिया जा रहा होता है, उसकी मदद की जा रही होती है, तो अब क्या उस मुस्तहिक के लिए पूछना जरूरी है कि भाई ये हलाल का है या हराम का है, या कैसे आया कैसे नहीं आया, या आया कि जो उसको दी जा रही है रकम जबकि ये मुस्तहिक है तो ये ले ले।
देखिए ये हराम वाली बात तो शायद लोगों ने आज पहली दफा सुनी हो, ठीक है ना, कि यूं ये रकम भी सदका होती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि आप किसी को जाके ये बोलें कि ये हराम की रकम है आप ले लो, अस्तगफिरुल्लाह। तो आला तरीन जो ना इज्जत नफ्स के खिलाफ बात है,
ठीक है।
तो जक़ात तक की रकम में सामने वाला जो ना वो सफेद पोश आदमी अगर चाहे मुस्तहिक है, उसमें भी ये तरगीब है कि आप ईदी के कर दें, आप तोहफा के कर दें, कर्ज के कर दें, बराह रास्त ज़कात के कभी ना दें,
ठीक, सदका के करना दें।
हर आदमी की एक इज्जत और मुरव्वत होती है तो उसका लिहाज रखना जरूरी है।
मुझसे इसी पे मैं पूछ लूँ, बात कंक्लूड हो जाएगी कि जैसे आपने कहा कि उसको ज़कात के कर ना दें, लेकिन बाज़ुकात कंडीशन ऐसी होती है कि उससे पूछ लें, मतलब इतना करीबी रिश्ता भी नहीं होता, नाता भी नहीं होता, सामने वाला तकाजा भी कर रहा होता, अगर उससे पूछ लें कि हमारे पास दो अमाउंट है, सदका नाफला भी है और वाजिबा भी है, तो अगर आप या जिसको चाहिए वो ज़कात के मुस्तहिक हैं तो उसमें से दे दें, तो बाज़ुकात को हामी भर लेते हैं।
सामने वाले आदमी को देखा जाता है,
ठीक है,
कि वहां से कितना महसूस किया जाएगा,
ठीक है।
तो बाज़ुकात जो है ना वो एक आदमी ऐसा होता है कि जो अपनी जरूरतें इसी तरीके से पूरी कर रहा होता है,
ठीक,
और एक होता है उसने कभी ये दरवाजा देखा ही नहीं होता,
सही,
बहुत भारी होता है।
सही, बढ़ते हैं फैसल सिद्दीकी भाई के पास। और जी फैसल सिद्दीकी भाई क्या सवाल कर रहे हैं?
फैसल सिद्दीकी भाई ने मोटर शटर की कोई बात नहीं की, क्या ये मोटरें जो है इतनी महंगी क्यों हो जाती हैं, और लोग कहते हैं भाई ये मोटरों के अंदर ये फंक्शन नहीं होता वो फंक्शन नहीं होता, लेकिन आपकी कंपनी के ट्रक तो बड़े मशहूर हैं पाकिस्तान में, तो बहुत चलते हैं,
बहुत प्रोफेशनल,
या कारें ज्यादा चलती हैं या ट्रक ज्यादा चलते हैं?
हमारे सिर्फ ट्रक्स होते हैं, हमारे
ट्रक ही होते हैं,
कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं हमारे, सिर्फ ट्रक्स और बसेस।
बात है
जी जी,
ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं या किसी भी फील्ड में जो अफराद होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो अपनी फील्ड ही की बात करते हैं जहाँ पे भी बैठते हैं, दूसरे वो होते हैं कि 8-10 घंटे अपनी फील्ड की बात कर चुके हैं तो अब कुछ और किया
जारी होती है, ठीक है ना
जी। सवाल आपका,
मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है, क्या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना ये जायज़ है, और अगर इसमें कुछ प्रॉफिट होता है तो उसके लिए क्या हुक्म होगा?
प्रोफेशनल हज़रात का एक प्रॉब्लम ये है कि ये 9 to 5 तो इनकी ऑफिशियल जॉब टाइम है ना
जी,
और जिसकी जितनी जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है वो उतनी देर से फारिग होता है, उसके बाद सिवाय घर के तो कुछ सोचता ही नहीं है। अब जो सेविंग है वो कहाँ लगाए, ठीक है, मतलब ये तो मुमकिन नहीं है कि वो कारोबार में सेविंग लगाएगा या खुद कारोबार को देख सकेगा, उसके पास इतना तो टाइम नहीं मिलेगा। और आमतौर पर अच्छा जो प्रोफेशनल है और एक अच्छी पोजीशन पर है उसको थोड़ी सेविंग ज़्यादा हो जाती है, फिर वो सोच रहा होता है कि यहाँ लगा दूँ वहाँ लगा दूँ। बहुत सारे लोगों ने लगाया अपना बिटकॉइन में और इस तरह की दीगर चीज़ों में। देखिए हमने शुरू दिन से ही ये बात की कि ये जायज़ नहीं है, उसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि आप जब क्रिप्टो में पैसे लगा रहे हैं तो आपको अगेंस्ट में क्या मिल रहा है, कंप्यूटर कोड, किसी वक्त भी वो हैक हो सकता है, बहुत सारे लोग की भूल गए, फिर इतनी बड़ी अमाउंट है, आज अगर वो 40 लाख का है बिलफर्ज, रियल कीमत तो मुझे नहीं पता, तो 40 लाख रुपए में तो एक फैक्ट्री लग जाती है और उस फैक्ट्री में पूरा एक सर्कल चलता है, एक मजदूर को जॉब मिलती है और एक लेबर को जॉब मिलती है, ट्रांसपोर्टर को जॉब मिलती है, दुकानदार के पास एक बिजनेस आता है, और यहाँ एक कंप्यूटर का कोड कंप्यूटर में अंदर रहेगा, आपके पैसे चले जाएंगे, फिर उस चीज़ की ज़रूरत क्या है? बिजनेस हमेशा ज़रूरत की बुनियाद पर होता है कि माशरे को, जैसे अशर साहब हैं 2000 से पहले तो पाकिस्तान में तो कोई जगह नहीं थी आपके बिजनेस की। मुझे एक साहब मिले एक मरतबा सफर में, कहने लगे कि मैं टेलीग्राफ जो है ना उसका काम करता था और पीटीसीएल वालों से छुप छुपा के करता था, पीटीसीएल वाले अलाउ ही नहीं करते थे कि कोई टेलीग्राफ चलाए, क्योंकि पीटीसीएल खुद चलाता था, किसको टेलीग्राफ करना है, टेलीग्राफ है टेलीग्राम बोलेंगे,
टेलीग्राम जी, टेलीग्राम,
अच्छा टेलीग्राफ से वैसे
टेलीग्राफ भी शायद राइट था,
तो पीटीसीएल वाले खुद इसकी सर्विस देते थे, सिर्फ मशीन लगा के फोन की तार लगानी होती थी बस। तो कहता था मैं बड़ी मुश्किल से करता था, फिर कहने लगा ईमेल का ज़माना आया, हमने कंपनियों को जो है वो ईमेल भेजना शुरू की और ईमेल की सर्विस देना शुरू की। तो ये भी एक ज़माना था, ज़रूरत ही नहीं थी। जब ज़रूरत आई तो हर एक शख्स समझता है इसकी क्या ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी में क्या, पूरी दुनिया को देख लें ओवरऑल, बिटकॉइन कहाँ खड़ा है या क्रिप्टो कहाँ खड़ी है? कहीं भी नहीं खड़ी। जो फवायद बयान भी कर रहा होता है वो कह रहा होता है हाँ फलां मुल्क के अंदर एक बूथ लग गया है जनाब, वहाँ से आप ना कार्ड के जरिए स्वाइप करवा सकते हैं। दुनिया में एक जगह दिखाकर ज़रूरत तो ना हुई हो। तो हमेशा पैसा वहाँ डाला जाता है कि जहाँ माशरे की बुनियादी ज़रूरतें कम अज़ कम वाबस्ता हों, तजारत के ही फवायद होते हैं। और दूसरी वजह क्या होती है कि जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ अप डाउन रहेगा। वो सोसाइटी जहाँ रियल कंज्यूमर नहीं आया, सिर्फ इन्वेस्टर आए हैं, वो सोसाइटी हमेशा नीचे बैठती है, हमेशा डैमेज में जाती है, क्योंकि इन इन्वेस्टरों ने भी माल बिल आखिर रियल कस्टमर को बेचना है ना। जहाँ किसी वजह से रियल कस्टमर आएगा ही नहीं
जी,
ये कभी भी नहीं उठ सकती। तो ये जितने भी बिटकॉइनर हैं या इस तरह का काम करने वाले हैं सारे इन्वेस्टर हैं। जब सारे इन्वेस्टर हैं
जी,
ठीक है, और उसकी रियल ज़रूरत है ही नहीं माशरे के अंदर, तो ये सिस्टम ग्रोथ करेगा कैसे? सिर्फ इससे एक तबका फ़ायदा उठाएगा, ब्लैकमेलर, स्मगलर, और जिनको जो है भत्ते लेने हैं इंटरनेशनल सतह पर, इतना बिटकॉइन भेज दो, फला करेंसी भेज दो। इसके अलावा जो कॉमन आदमी है, कॉमन माशरा है, उसे फ़ायदा नहीं उठाएगा। और भी बहुत सारी खराबियाँ हैं, तो हमने कई असबाब और बिलखसूस गरर की बुनियाद पर इसको कभी भी जायज़ नहीं कहा। जो रियल काम है उसको इख्तियार किया जाए। आप लोगों की जो फील्ड है, आप ज़रात बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपने अपने मोतमद आदमी पे हाथ रखना है। जो आप आजकल तो मोतमद भी मोतमद नहीं निकलता, पैसे
तो मोतमद से पैसे, कम हो रहा
है। पैसे जो है ना उसके वाले करने के बाद वो भी मोतमद नहीं निकलता, लेकिन बंदा थोड़ा सा रिस्क ले। मिसाल के तौर पर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, तो आप 1 लाख रुपए से किसी एक रिश्तेदार, किसी एक जानने वाले, किसी एक दोस्त को मोटिवेट करें कि तुम ये काम करो, आजकल इस काम की लाइन है, ठीक है, ये काम तुम्हें करना चाहिए, आप अगर समझते हैं तो 1 लाख उसके हवाले करें, उससे मुदारबत करें, वो काम करे। बाज़ुकात एक नया आदमी इसलिए फेल हो जाता है कि वो शुरू में इतने एक्सपेंस कर देता है, वो दिखावे के चक्कर में पड़ जाता है
जी।
हर चीज़ में दिखावा नहीं होता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़े आसानी से हो जाती हैं। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि अब जो ना इस तरह का काम बढ़ता जा रहा है कि एक बिल्डिंग जहाँ एक फ्लोर किसने ले लिया, और फ्लोर लेने के बाद ये पूरा फ्लोर अब मुश्तरका ऑफिस होगा, इसमें केबिन्स लगे होंगे, पर सीट कितने किराए में मिलेगी जनाब, उसके अंदर यूटिलिटी सहूलतें हो गई, उसके अंदर इंटरनेट हो गया, पार्किंग, ये कोई दरा मैनेज करेगा? अब 4-5 लोग मिलके एक फ्लोर बुक करवा लें किसी ऐसे एरिया के अंदर जो एक बिजनेस एरिया है या जो जिसके अंदर लोग आराम से आ जा सकते हैं, सेंट्रल एरिया है, इस तरह की सहूलतें दे दें, तो बहुत सारे नए आइडियाज आ सकते हैं। कुछ लोग मिलकर कर सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट है तो कुछ लोग मिल जाएं, और वर्किंग करने वाला एक्सपर्ट है तो और अच्छा है, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। देखिए, जो लोग आपसे पैसा लेके कहीं और पैसा लगाते हैं, उनको कुछ मिलता है जब तो वो आपको दे रहे होते हैं,
ऐसे ही
जो इंस्टीट्यूट हैं। मैं ताजरों के साथ बैठता हूँ तो ताजरों का ये कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग के काम में 40% बेनिफिट है। एक आम ताजर जो काम कर रहा होता है वो आराम से जो 25 से 30 के दरमियान काम कर रहा होता है, सालाना प्रॉफिट उसका इतना होता है। तो यूँ जब इतना प्रॉफिट है तो आप क्या ज़रूरत है कि आप उस तरफ जाएँ जहाँ खतरात भी ज़्यादा हैं हलाल वराम के ताल्लुक से, और आप अपने पाँव पे खड़े हों। एक साहब मेरे पास आए, बल्कि वो हमारा एक दूसरा दारुलिफ्ता है, वहाँ वो मसाइल पूछ रहे थे, तो उन्होंने मुझसे मशवरा किया, मैं कह रहा मेरे पास भी ज़रा भेजें इनको। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और उनकी हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है, तो हफ्ते के दिन वो आ जाते हैं जुड़िया बाजार बर्डर मार्केट। उन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ ऐसी ख़वातीन जो घरों में कुछ चीज़ें बेच सकती हैं, उनके साथ इन्वेस्टमेंट का मामला किया, और हफ्ते को आके डिमांड लेते हैं और वो माल उनको पहुँचा देते हैं। बता रहे थे कि मैंने 12-15 आइटम्स काम शुरू किया था, 250 आइटम पे पहुंचा हुआ हूँ। छुट्टी का दिन वो यूं यूज करके, और एक नहीं कई पॉइंट अब उनके हो गए हैं कि जो ये काम कर रहे हैं, तो कुछ उनके तरीके में गलतियां थी, वो हमने उनका मॉडल सही करवा दिया कि इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से काम करें, किए जा रहे हैं जनाब। अब अगर उनको ये कहता है कि भाई मेरे पैसे भी शामिल कर लो, वो कहते हैं कि नहीं मुझे पॉइंट बताओ, एक नया पॉइंट का इजाफा करवाओ, फिर मैं आपके पैसे शामिल करूँगा, ताकि माल कहीं तो बिकेगा ना वो। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बंदा खुद कर सकता है। तजारत में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है, बेपना बरकत रखी है।
उससे अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपने एक सवाल के जवाब में काफ़ी सारे निकात फरमा दिए। एक बात क्लियर कर दीजिएगा मुझसे, क्योंकि जब आप बिटकॉइन कहते हैं ना, तो लोग कहते हैं भाई बिटकॉइन तो एक है ना, और भी हैं उसके बहन भाई, तो मुख्तलिफ नामों से ये पुराने शिकारी नए जाल लेकर आते हैं। असल तो ये भी वजाहत कर दें कि ये सिर्फ बिटकॉइन के साथ खास है या इस किस्म की सारी करेंसियाँ?
कहना तो चाहिए क्रिप्टो ही, बाज़ों का जबान पे बिटकॉइन ज़्यादा चढ़ जाता है,
ठीक है, वो
मशहूर ज़्यादा है ना, तो क्रिप्टो ही पर बात हो रही है हमारी। क्रिप्टो ज़रा बात एक ख़ास पस मंज़र में क्रिप्टो पर बात हो रही है, वरना जो जिस टेक्नोलॉजी पर क्रिप्टो बनी है, हम उस टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत सारे अच्छे कामों में यूज़ होती है, तो उसके हम खिलाफ नहीं बिल्कुल।
सर मेरे पास एक वाक्य है, आप इजाज़त दें, आपने जो बात की ना उससे मुतालिक है।
इरशाद,
आपने फरमाया कि चीज़ों के जो है ना वो नेचुरल ग्रोथ नहीं हो रही होती और लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो मैं अपनी आंखों देखी बात बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास एसेट्स होते हैं और इन्वेस्टमेंट की जगह नहीं होती, फिर आप कैसे भागते हैं। सब 2002 से 2005 में पाकिस्तान में बिलखसूस प्रॉपर्टी में जो है वो इंक्रीजिंग हुई, और वो आर्टिफिशियल ग्रोथ इतनी तेजी के साथ हुई कि अच्छे अच्छे लोग जो है वो सब जमीनों पे जाके बैठ गए कि जी हम प्रॉपर्टी का काम करेंगे। तो गोल्ड की फील्ड के अफराद को मैं जानता हूँ जिन्होंने 1 किलो 2 किलो और 5 किलो सोना बेचकर जमीनें खरीद ली, इस उम्मीद पे कि जी ये तो पर लग गए इसको, और वो फिर पर कट गए, और फिर उन्होंने जो 1 किलो 2 किलो सोना बेच के जमीनें खरीदी थी मुफ्ती साहब, वो बेचना मुश्किल हो गई, और जब वो बिकी तो बमुश्किल कहीं 200 ग्राम कहीं 300 ग्राम सोना उसके इवज आया, रकम के इवज। तो वही था, वो आर्टिफिशियल ग्रोथ थी सारी, तो उसके अंदर जब कूदे तो
आर्टिफिशियल ग्रोथ के अलावा ना बात ये नहीं है, बात ये है कि सब्ज बाग दिखाने वाले जो लोग हैं ना वो काम खराब करते हैं। जैसे ये अगर कोई बहुत बड़ी जमीन खरीदता है तो उसको दिगर भी औसाफ उसके अंदर होने चाहिए, उसके सामने माफियाज आएंगी, उसके सामने क्या क्या सेक्टर्स आएंगे, कब्जा ग्रुप आ जाएंगे, तो हर आदमी ये काम कर भी नहीं सकता। ये एक डिफरेंट तरफ का काम है, आपने रहने के लिए प्लाट ले लिया, एक आध प्लाट की सोसाइटी में ले लिया, एक आम आदमी ये तो कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से एक हर पैसे वाला फैक्ट्री नहीं लगा सकता
जी,
और एक टेक्निक है फैक्ट्री लगाने की, तो यूँ इस वजह से भी नाकामी होती है कि फैसला गलत हुआ होता है। ये जो सब्ज बाग दिखाए गए, लोग बस सब्ज बाग देख कर उतर जाते हैं और फैसले उनके सही नहीं होते, बर वक्त नहीं होते, इसकी वजह से नुकसान हो रहा होता है।
चले जी, जी नदीम रियाज साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद।
सब मार्केट में कुछ लोगों का एक सिस्टम चल रहा है कि काम लेने के लिए जो है वो तोहफे दिए जा रहे होते हैं, बहुत सारी फील्डों में है ऐसा, और उस तोहफे के अगेंस्ट वो बहुत सारा काम लेते हैं। तो ये जो तोहफे दिए जा रहे हैं उस काम को लेने के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए, तो वो किस जमरे में आएगा?
देखिए, एक फैक्ट्री माल बनाती है, उसका जो मैनेजर है उसके अप्रूवल से माल बिकता है, खरीदार आता है तो कहता है मैं तो आपको नहीं बेचूंगा, खासतौर पर जो हॉट आइटम है जिसकी बहुत चलत है, तो उस मैनेजर की जेबें गर्म की जाती हैं, या उस फैक्ट्री को कोई पुर्जे खरीदने हैं, कोई खाम माल खरीदना है, डिफरेंट जगहों से जो है वो पेशकशें आई हुई हैं, तो ये उसकी पेशकश को ओके करेगा, बेहतर करार देगा, क्वालिटी मार्क्स पूरे देगा कि जो इसकी जेब गर्म करेगा। इस वक्त जो हालात हमारे सामने जो हमें नज़र आता है, तकरीबन 70-80% जगहों पर जो मैनेजर या जिनके पास इस तरह के इख्तियारात हैं वो इसी बुराई में मुबतला हैं।
जैसे मुफ्ती साहब सेज रेप वाले हैं ना, सेज रैप में मैनेजर्स जो हैं वो डॉक्टर्स को बड़ी बड़ी ऑफर्स करते हैं कि हमारी मेडिसिन लिख करके देना है आपने, और डॉक्टर्स जो हैं वो लिख करके देते हैं तो कोई एसी लगवा देता है, कोई बाहर ममालिक भेज देता है कि भाई आपका टूर है। तो ये जो इस मद में कि हमारी मेडिसिन लिख कर दी जाए, ये जायज़ है नाजायज़ है?
मैं समझता हूँ, चूँकि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचते हैं तो मेरा ध्यान पहले वहाँ गया इंडस्ट्री की तरफ,
उसमें भी
इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ, तो वहाँ तो ये बहुत ज़्यादा है, परचेजिंग में भी बहुत ज़्यादा है कि एक परचेजर है किसी इदारे का, जब वो लेने जाता है माल तो बड़ी बड़ी कंपनी को तो माल ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो वहाँ दुकानदार उसको ऑफर करता है हमारे पास से ले लो, तो मैं इतने पैसे में अलग से दूंगा, बिल ज़्यादा बनाऊंगा, पैसे कम लूंगा। दूसरी तरफ हम आ जाए तो ये जो सारा सिलसिला ये रिश्वत है, नो डाउट ये रिश्वत है। वो मैनेजर जो पैसे ले रहा है किस बात के ले रहा है, उसको तो तनख्वाह मिलती है, कंपनी के मफाद में फैसले करना उसकी जिम्मेदारी है, वो ब्लैकमेलिंग करके जो पैसे ले रहा है वो रिश्वत है। यही मामला डॉक्टरों के यहाँ है कि डॉक्टर जो है लेबॉरेटरीज के साथ फिक्स होती है, जहाँ वो टेस्ट रेफर करता है पूछते हैं हाँ भाई किसके रेफरेंस से आए हो, तो उसका अकाउंट पहले से वहाँ बना होता है। मेडिकल रेप वाले आपके पहले से टारगेट देकर जा चुके होते हैं, अगर आपने हमारी दवाई हमारी कंपनी की इतने लाख की सेल करवा दी तो ये तोहफा आपके लिए है। तो वो दवा बनती थी मिसाल के तौर पर 500 रुपये की, वो लिखेगा 5,000 रुपये की, क्योंकि उसको टारगेट चाहिए। एक हदीस पाक है अल मुस्तशारुल मुतमन के जिससे मशवरा तलब किया गया वो अमीन होता है, यानी हर एडवाइज़र उसके कंधे पर एक अमानत है। हम जब किसी डॉक्टर की खिदमात लेते हैं तो एडवाइजरी ले रहे होते हैं, हम फीस पे करते हैं, उसको ये चाहिए कि वो सिर्फ हमारे लिए काम करे, हमारे मफादात तरजीह पाएं, हमने फीस अदा की है, लेकिन वो हमारे मफादात के बजाय अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देता है। और अगर मिसाल के तौर पर वो 200 रुपये की दवाई नीड थी 200 की लिखता है तो उसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन अगर वो ज़्यादा लिख रहा है तो ये तो जुर्म है, तो कई गुना बड़ा जुर्म है। और उसके बाद फिर जो ये ताइफ का जो सिलसिला है, तो ताइफ का सिलसिला सेल बढ़वाने के लिए काम निकलवाने के लिए है, ये वाइट कलर जो जराइम है हमें नज़र आता है कि जनाब सिर्फ पुलिस रिश्वत लेती है या पोर्ट पर रिश्वत ले जाती है या कस्टम में ले जाती है या कोर्टों में ले जाती है, ये वाइट कलर जराइम है। ये फैक्ट्री एरिया मैंने बयान किया या जो आपने बयान किया मेडिकल एरिया, तो इसके अंदर ये रिश्वत है, ये सब चीज़ें तो जायज़ नहीं है। अब इसकी वजूहात क्या हैं, वजूहात पर भी जाना होगा हमें। देखिए सेल्फ फाइनेंस पर जो बंदा आज मेडिकल पढ़ कर डॉक्टर तैयार होता है 60 लाख रुपये से कम में तैयार नहीं होता,
बिल्कुल ऐसा ही
ठीक है। या तो कोई बड़ा हॉस्पिटल इसको जॉब दे दे और वो तनख्वाह भी फिर इतनी दे कि 60 लाख रुपए लगा के जो बंदा तैयार हुआ है तो वो बंदा जो है वो अपने उस इन्वेस्टमेंट के मुताबिक तनख्वाह पाए। डॉक्टर ज़्यादा हैं और फील्ड में ज़रूरत और खपत कम है, हकीकत यही है।
बिल्कुल
इस वक्त जो है वो सिंध के अंदर मैंने तो कम से कम पहली दफ़ा देखा है कि मेरिट पर बाकायदा टीचर भर्ती हुए हैं और कहीं से भी कोई इसी तरह की रिश्वत चली हो या सिफारिशें चली हो बहुत मेरिट पर हुआ है। कितने ऐसे इंजीनियर जिनको मैं जानता हूँ वो प्राइमरी स्कूल के टीचर लगे हैं, हाई स्कूल के टीचर लगे हैं, जॉब नहीं है उनके पास, फील्ड नहीं है, इंजीनियरिंग की फील्ड महदूद है। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो हमारे यहाँ कोई हाउसिंग सोसाइटियाँ तो बन रही हैं, लोग कह रहे हैं हमें फ्री जोन बना दो, वो नहीं बने हुए, इंडस्ट्री नहीं आ रही, तो वो मैकेनिकल इंजीनियर कहाँ जाएगा? सिविल इंजीनियरिंग का काम ही कम है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, कोई यहाँ बड़े बड़े तरक्याती जो प्रोग्राम हुए ऐसा नहीं है। तो वालदेन की भी जिम्मेदारी है कि क्या चीज़ किस चीज़ की नीड है। आज कहत पड़ा हुआ IT एक्सपर्ट्स का कहत पड़ा हुआ है, मतलब आप पड़ोसी मुल्क को देख लें, जितना अरब बड़ा अरब मुल्क जो है वो तेल बेच कर जितने पैसे हासिल करता है डॉलर की सूरत में, उससे ज़्यादा पड़ोसी मुल्क IT की मद में पैसे हासिल कर रहा है। तो इसकी भी जरूरत है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कि थोड़ी थोड़ी कि हम हर शख्स इंजीनियर बने, हर शख्स डॉक्टर ही बने, जितने माशरे को जरूरत है उतने बने। और सेकंड ऑप्शन तो है ना कि गवर्नमेंट में कोई मेरिट पर जाता है और वो डॉक्टर बनता है, उसकी तो बड़ा इनाम फीस होती है। तो यूँ बात चीज़ें जो है मिक्स हो रही हैं हमारे माशरे के अंदर। असबाब पर भी गौर करना होगा, कोई गलती पाई जा रही है, नफसा नफसी की दौड़ लगी हुई है, तो उसके असबाब और मुहरिकात क्या हैं। इन असबाब और मुहरिकात में एक सबब जो है वो प्राइवेट सेक्टर के जो तालीमी इदारे हैं वो भी हैं।
उसे जो आपने गुफ्तगू की, इसमें मैं दो चीज़ें पूछना चाहूँगा। एक तो वो जो गिफ्ट वाला पैकेज चल रहा था कि जनाब वो मेडिकल रैप के जो अफराद आते हैं वो बाज़ुकात करते हैं, कंपनी के भी करते हैं इस तरीके से, तो एक चीज़ होती है बाज़ुकात कंपनीज ही ऑफर करती हैं, वो टारगेट देती हैं, होती इससे डिफरेंट है, मैं यही चाह रहा हूँ कि जवाब मिल जाए उसका भी। वो टारगेट लॉन्च करती हैं कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कभी डिवीज़न पर, कभी सिटी पर, कभी कंट्री लेवल पर, कि जी जो जो इस टारगेट को अचीव कर लेगा तो फिर उसको हम ये प्राइस देंगे, ये पैकेज देंगे, ये हम वीज़ा दे देंगे, फलां कंट्री का ट्रिप करवा देंगे या उमरा करवा देंगे। तो क्या ये भी उसी किस्म का पैकेज होगा या ये जायज़ होगा?
देखिए डिफरेंट सूरत हाल है बिल्कुल। डॉक्टर जो है वो दवाइयाँ बेचने तो नहीं बैठा हुआ ना?
नहीं ऐसा नहीं है,
डॉक्टर तो बैठा हुआ है अपनी राय देने के लिए, एक्सपर्ट राय देने का वो पाबंद है
जी।
उसका मामला मुख्तलिफ था। तो यहाँ जहाँ तजारती पैकेजेस हैं और ये इनाम की हद तक है कि इस एतबार से हम आपको इनाम देंगे, कोई बाउंडिंग भी नहीं होती और डिफरेंट चीज़ें बदलती रहती हैं
जी,
ये मुसाबकत है
ठीक है,
ये और चीज़ है, और डॉक्टरी जो मामला है वो और चीज़ है। तो ये जो चीज़ें आपने बयान की तो जायज़ है
ठीक है। मतलब इसी तरीके से जो डॉक्टर का आपने फरमाया, अभी भी आपने दोबारा में फरमाया कि डॉक्टर हमारा नुमाइंदा है और दवाई की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो लिख रहा है उसने आपने फरमाया कि तो ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है। लेकिन इस तरीके अगर वो जो मेडिसिन दे रहा है वो मरीज की ज़रूरत है, वो ओरिजिनली मरीज की ज़रूरत बनती है, लेकिन वो जिस कंपनी की मेडिसिन दे रहा है वो कंपनी के रेट ज़्यादा है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ,
कम बेफर्ज कम हो, एक मिसाल कम हो ठीक है ना
जी,
तब भी उसने किस बुनियाद पर पैसे पकड़े हैं
ठीक,
ये पता देखा जाएगा ना, वो बुनियाद ही ठीक नहीं है
ठीक है। यानी ये मेडिसिन कंपनी का नुमाइंदा या उसका ये मिडिलमैन बन ही नहीं सकता डॉक्टर, ये एक फरमा रहे हैं आप ठीक है जी। हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, बैठे हुए तो हमारे पास दो तीन फील्ड्स के एक्सपर्ट थे या कह लें कि वहाँ पर टाइम गुजारा हुआ है, लेकिन आज प्रोग्राम में काफ़ी डिफरेंट सवालात हुए, कुछ ऐसे सवालात हुए हैं जो शायद हर घर की ज़रूरत हों और बहुत सारे जहनों में यूं ही पनप रहे हों कि जी ये सुन तो रहे हैं क्या, तो हो सकता है वो भी क्लेरिफिकेशन हुई हो। अल्लाह पाक हमें इल्मे दीन हासिल करने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एज अ होस्ट मैं अपने पार्टिसिपेट, हमारे जो शुरका हैं जो मुख्तलिफ जगहों से तशरीफ लाए, इनको शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अल्लाह पाक इन्हें जजाय खैर दे और ये इल्मे दीन की जो बैठक है अल्लाह करे आखरत में भी अजर सवाब का बाइस बने और दुनिया में भी इसके जरिए से हमें नफ़ा पहुँचे। देखते रहिए मदनी चैनल, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सच्चा अमानतदार ताज मुझे को तू या रब बना, सच्चा अमानतदार ताज मुझे को तू या रब बना, तेरी पसंद की हो तिजारत गफलतों से तू बचा।